ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰੋ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਹੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੂਗੀ ਕੁਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਸੰਗਤ ਦੇ ਠੀਕ ਸੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੇਂ ਜਿਤਨਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕੀ ਹੇਤੂ ਜੋ ਵਾਸਨਾ ਤਾਂ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ ਔਰ ਭੋਗ ਕਾ ਹੇਤੂ ਜੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਂ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਲ ਦੀਏ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਜਹ ਵਾਰਤਾ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੇਂ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਰੀਤੀ ਸੇ ਗਿਆਨੀ ਕੂ ਫਲ ਭੋਗ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਗਿਆਨੀ ਕੂ, ਗਿਆਨੀ ਕੂ ਤੋ ਭੋਗ ਸੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਬਣੇ ਹੈ ਕਾਹੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਮ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੈਸੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ? ਸੁਣੋ, ਗਿਆਨੀ ਕੂ ਤੋ ਭੋਗ ਸੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਕਰਮ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਬਣੇ ਹੈ ਕਾਹੇ ਤੇ, ਕਰਮ ਔਰ ਕਰਤਾ ਤਥਾ ਫਲ ਪਰਮਾਰਥ ਸੇ ਤੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ? ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਹਨੇਰੇ ਚ ਹੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪੂਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਔਰ ਕਰਤਾ ਤਥਾ ਫਲ ਪਰਮਾਰਥ ਸੇ ਤੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ ਵਿਦਿਆ ਸੇ ਕਲਪਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਵਿਦਿਆ ਕਾ ਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਕਲਪਿਤ ਜੋ ਕਰਮ ਆਦਿਕ ਹੈ ਤਿਨਕਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਗਿਆਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰੱਜੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਜੂ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸਰਪ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਚਿਆ ਕਿਆ ਫਿਰ? ਅਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਭ ਮਿੱਥਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਪਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਾਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਐਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਪੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਬਈ। ਹਾਂ, ਜੈਸੇ ਸਪਨਾ ਔਰ ਸਪਨ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਐਸੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਲੋਕ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਲੋਕ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਦੇਖੋ, ਆਪ ਸਪਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਤਿਸਕਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸੇ ਨਾਸ਼। ਜੈਸੇ ਸਵਪਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨਿੰਦਰਾ ਸੇ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਹੈ ਤਿਨਕਾ ਜਾਗਰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨਿੰਦਰਾ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਸੇ ਅਭਾਵ ਹੋਵੇ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਸਵਪਨ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਪਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਸਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਗਾ? ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖਾਲੀ ਜਾਗੇ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੈਸੇ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਨਿੰਦਰਾ ਸੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜੋ ਹੋਵੇ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਫਲ ਤਿਨਕਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਸ਼ਾ ਰੂਪ ਜਾਗਰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਅਵਿਦਿਆ ਕੀ ਨਿਵਿਰਤੀ ਤੇ ਅਭਾਵ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਅਭਾਵ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਛਾ ਕੇ ਅਭਾਵ ਤੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕਾ ਫਲ ਭੋਗ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤੋ ईश्वर का संकल्प मिथ्या होवेगा। अब भगवान साढ़े दसे भगवान की कह रहे हैं निष्काम कर्म करो। अब निष्काम कर्म का भी नंबर आ गया थोड़ा, इधर भी सुन लो। निष्काम कर्म करो तो निष्काम कर्म ने इच्छा से रहित, तो जदों साड़ी इच्छा नहीं होगी तो कर्म सानू फल नहीं देगा। अब ये प्रसंग चल पिया, जदों साढ़े दसे भगवान कह रहे हैं गुरु नानक साहब तो लैकर के दसम भगवान तक निष्काम कर्म करो निष्काम करो, गुरबाणी पूरा जोर लगा रही है इसे उपदेश से निष्काम करो, निष्काम कर्म का फल नहीं मिलेगा सानू, फिर की करन दा की फायदा? फिर जे फल ही नहीं मिलना तो फिर जे फल मिलना तो उन्हें निष्काम क्यों कहा भाई, है ना। अब इस प्रसंग नू ठीक से सुन लो। इच्छा के अभाव, इच्छा के अभाव से मैंने निष्काम, ठीक है ना। जा तुसी पहले इदा ही सुन लो, इच्छा का मतलब मेरे को ये कर्म करूंगा मैनू ए दा फल ये चाहिए, ये तो होगी इच्छा। तो ये कर्म का फल, पाप कर्म का फल की है? दुख। तो दुख की कोई इच्छा करता है? तो पाप कर्म तो हो ही रहे हैं, दुख की कोई इच्छा तो करता नहीं, तो पाप कर्म का फल की है? दुख। तो फिर का पाप कर्म तो हो ही रहे, क्या उन्होंने फल नहीं मिलेगा? उन्होंने इच्छा ही नहीं है, तो वह भी तो निष्काम हो गए। भी एक चोर चोरी कर रहा है तो चोरी का फल की है? दुख। क्या वो ये चाह रहा भी मैं सजा मिले, मैं ता कर रहा हाँ, तो क्या हुआ फिर? वो निष्काम ना हुआ। ठीक से सोचो, चोर चोरी कर रहा है तो चोरी का फल की है? दुख। तो चोरी करने वाला कह रहा भी मैं दुख मिले, वो तो सुख वास्ते कर रहा, मेरे पास पैसे है नहीं, ये चुक के तो आप ऐश करांगे। तो पर कर्म का फल की है? दुख। तो दुख चाह रहा, वो नहीं चाह रहा ना, तो फिर की होया? निष्काम। तो जो निष्काम कर्म होवे इच्छा तो, निष्काम कर्म का फल ना होवे तो चोर डाकू नू नहीं मिलना चाहिए, फिर फल तो है ही है ना। तो फिर भगवान ने निष्काम क्यों कहा, है ना। अब सुन लो फिर, वो भी इच्छा के अभाव ते जो कर्म का फल भोग होवे नहीं तो ईश्वर का संकल्प मिथ्या होवेगा। जो वेद ने भगवान ने संकल्प कर दिता सृष्टि की आदि में, ए कर्म जिहड़ा तुसी करोगे इहदा फल ए है, ते आप जे भगवान कह रहे निष्काम कर्म, जे आपां निष्काम कर्म करांगे इच्छा तो रहित रख के, इच्छा नहीं सानू उस फल दी, इहदा मतलब ए थोड़ी है भी फल कर्म फल नहीं देगा अपना। जो फल नहीं देगा तो फिर तो वेद ही निष्फल हो जाएगा, ठीक है ना। फल तो देगा पर कैसे फल देगा, सुन लो। काहे ते फल भोग बिना अज्ञानी के कर्म की निवृत्ति होवे नहीं, यह ईश्वर का संकल्प है। जो इच्छा के अभाव ते करे कर्म का फल होवे नहीं तो ईश्वर का संकल्प मिथ्या होवे, मिथ्या ही होवेगा। और सत संकल्प ईश्वर है जह वार्ता शास्त्र में प्रसिद्ध है। जाते इच्छा के अभाव ते पूर्व करे काम में कर्म का फल होवे नहीं, जह वार्ता विरुद्ध है। अब और सुनो, जो इच्छा के अभाव ते ही काम में कर्म फल नहीं होवे तो अशुभ कर्म का फल किसी को भी नहीं हुआ चाहिए। अशुभ कर्म कर दिता, जेड़ा अशुभ कर्म कर रहा, पाप कर्म का अशुभ मने पाप, पाप कर्म कर रहा है तो कोई इशारा के थोड़ी कर रहा भी मैनू इहदा फल मिलेगा। हाँ, चोर वाली गल वही आ गई ना। हाँ, अशुभ कर्म का फल किसी को भी नहीं हुआ चाहिए। काहे ते अशुभ कर्म का फल दुख है, ठीक है ना। पाप कर्म का फल की है? दुख। ताकि किसी की भी इच्छा है नहीं। जाते ज्ञान बिना कर्म के फल का अभाव होवे नहीं। और जो पूर्व कहया, जैसे कर्म के अनुष्ठान काल में जो इच्छा रहित पुरुष है ताकू कर्म का फल वेदांत मत में अंगीकार नहीं किया, तैसे कर्म के अनुष्ठान ते अनंतर भी जो पुरुष की इच्छा दूर हो जावे तो कर्म का फल होवे नहीं। सो वार्ता भी वेदांत मत को नहीं जान करके करी कही है, ठीक है ना। कैसे? कहे ते फल की इच्छा सहित जो कर्म करे अथवा फल की इच्छा रहित जो कर्म करे, सुन लो ठीक से, ठीक है ना, चाहे निष्काम करो कर्मो कर्म करो, चाहे साकाम करो, चाहे इच्छा रह के करो, चाहे इच्छा रहित करो, ठीक है ना। फल अथवा फल की इच्छा रहित जो कर्म करे, तिनकू कर्म का फल भोग तो निश्चित होवे है, परंतु इच्छा रहित कर्म से अंतःकरण शुद्ध होवे है, और इच्छा सहित जो कर्म करे है ताकू केवल भोग तो होवे है परंतु अंतःकरण शुद्ध नहीं होवे है। दो फल हो गए ना निष्काम कर्म दे, निष्काम कर्म दे दो फल हो गए। इस वास्ते भगवान जोर लगा रहे सानू निष्काम कर्म दे। दो फल केड़े हो गए, भी जेड़ा विधान बन गया भी एक कर्म करोगे एदा फल ए है, वो ते इच्छा वाले नू भी मिलेगा, इच्छा रहित वाले नू भी मिलेगा। तो फिर विशेष की होया, विशेष ये होया जेड़ा निष्काम कर्म है वो निष्काम कर्म करने वाले दा फल ते मिलेगा, साथ साथ अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा। वो जेड़ा सकाम है उन्हू खाली फल ही मिलेगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा उदा। इस वास्ते निष्काम कर्म ते काम तो एक ही है, खाली इच्छा नहीं सानू फल नहीं चाहिए दा, तो फल तो मिलना ही है ना, साधे अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होने तो बाद ज्ञान होएगा, ठीक है ना, बस ज्ञान हो जाएगा। इस वास्ते साडे गुरुआ ने सानू निष्काम कर्म ते जोर दिता है। जो इच्छा रहित कर्म करने ते शुद्ध अंतःकरण होए के सर्वण ते ज्ञान हो जावे, जो निष्काम कर्म कीते है अंतःकरण शुद्ध हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया तो फिर सर्वण कीता, वेदांत मत सर्वण कीता, उहदे नाल की हो ज्ञान हो गया, ताकू तो कर्म फल होवे नहीं। देख लो और भी कह रहे जे, वो कह रहे इच्छा रहित कर्म कीता ते उहदा अंतःकरण शुद्ध होके उहनू ज्ञान हो गया, तो फिर वह कर्म का फल नहीं उहनू भोगना पवेगा, चाहे सुख रूप ही है वो स्वर्गी है, क्यों, फिर तो मुक्त होएगा वो, है ना, वो भी गया, ठीक है ना, भले सोने की हथकड़ी है उन्हें कम तो बनने का ही करना है ना। निष्काम कर्म ने देखो कितों तक पहुंचा देता, निष्काम कर्म ने की कीता, फल तो मिलिया मिलिया, और दूसरा अंतःकरण शुद्ध कर दिता, अंतःकरण शुद्ध हो गया तो ज्ञान हो गया, तो ज्ञान हो गया सर्वण ते ज्ञान हो गया, ज्ञान होने तो बाद ते कर्म ते नष्ट हो गए सारे ही, तो फल किहड़ा देगा फिर। प्राप्त स्वामी देख लो सीधा ही साहब, कर्म करद्या करद्या निष्कामता आ गई तो फिर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्यों, अंतःकरण शुद्ध होगा ना, ठीक है ना। और जान जान जाने कर्म तो फल की इच्छा रहित किए हैं, परंतु सर्वण से सर्वण के अभाव ते अथवा किसी अन्य निमित्त के ते ज्ञान होवे नहीं, ताकू तो इच्छा रहित कर्म के फल का भोग दूर होवे नहीं, यह वेदांत का सिद्धांत है। जानते ज्ञान से बिना कर्म का फल भोग दूर होवे नहीं। वो कह रहे जिन्हें जिदा अंतःकरण शुद्ध है, शुद्ध तो हो गया, पर कोई ऐसा प्रतिबंध लग गया है कि उन्हें श्रवण करना मिलिया ही नहीं, वो सुन ही नहीं सकिया वेदांत, तो फिर ज्ञान नहीं होगा, फिर दूसरे जन्म च फिर चंगा मिल जाएगा, जन्म चंगे घर मिल जाएगा, जन्म लेंदिया ही कोई ऐसा मिल जाएगा सुना वाला, चल है हूँ अपने कर्म का हिसाब लगाओ ना थोड़ा जा, घर आके कोई सुना रहा हो तो फिर अपने कर्म का थोड़ी लगा लो, है ना, लगा लो अपने कर्म का हिसाब। भाई एक पुरुष को एक काल में नाना शरीर से जो भोग कहया सो भी जोगी सिद्ध। देखो साडे गुरु साहिबान ने कहा है ना, रिद्ध सिद्ध अवरा साध, केड़ा अच्छा, जो साडे गुरु साहिबान ने कहा है ना, क्या की क्या भाई, रिद्ध सिद्धा प्रसाद ओदी भी गल सुन लैनी थोड़ी, वह भी आ रही है।
हाँ,
रिद्धि सिद्धि का स्वाद मैंने आनंद कुछ और है, और मुक्ति का स्वाद मैंने आनंद कुछ और है। तो इस वास्ते वो साढ़े गुरु कह रहे हैं रिद्धियां सिद्धियां के चक्कर नहीं पैना, मुक्ति के चक्कर च पाओ जो पैना ही है तो। ऐसा क्यों कहा भी रिद्धियां सिद्धियां को माड़ियाँ, आकाश उड़ना जिते मर्जी जाके बैठ जाना, आते हाँ यही इन्ने जोगे रह जोगे, इतों तक ही रह जोगे, ठीक है ना। ऐसे क्यों कहा यह भी प्रसंग आ रहा, सुन लेना। जो इच्छा यही है ना, पूर्व कहा जो पूर्व पूर्व निमित्त कर्म के, अच्छा ठीक है ठीक है, पूर्व कहा जो प्रात से संपूर्ण अशुभ कर्म का नाश हो गया सो वार्ता भी बने नहीं, कहे थे अनंत कल्प के जो अशुभ कर्म है तिनका एक जन विषय प्राश्चित बने नहीं। कहता कर्म तो अनंत जन्मा दे, साडे अनंत कल्पां दे कल्प है, एक जन्म विच प्राश्चित कर लोगे तो कैसे सारे नष्ट हो जाएंगे, वो ज्ञान तो बगैर नष्ट नहीं हो सकते, ठीक है ना। होवे नहीं, और गंगा स्नान और ईश्वर का नाम उच्चारण से आदि लेके सर्व पाप के नाश के जो साधारण प्राश्चित कहे हैं सो भी ज्ञान के ही साधन है। आंदा प्राश्चित नहीं है, ये तो ज्ञान के साधन है, केड़े गंगा स्नान करना ईश्वर का नाम जपना ये की हो गए। आंदा ये भी प्राश्चित नहीं है, ज्ञान के साधन है। जाते सर्व पाप के नाशक कहे हैं, जाते ज्ञान से ही सर्व पाप का नाश होवे है, और पूर्व कहया जो नित्य नमैतिक कर्म के करने ते जो क्लेश होवे है सो पूर्व संचित निषिद्ध कर्म का फल है, जाते संचित निषिद्ध कर्म का फल और होवे नहीं। संचित निषिद्ध, संचित मैंने जड़े कट्ठे किते ढेर उहदे विच जड़े पाप कर्म है उन्हां दा फल की है, जिहड़ा आपां शुभ कर्म कर रहे हैं उहदे विच जिहड़ा सानूं कलेश हो रहा है, आंदा ये नहीं है। की पता किहड़ा कर्म आपां कीता गलत कम, पाप कर्म जिहड़ा उह ढेर विच पिया है, जदों नंबर आएगा तो उन्हें फिर अपना रंग दिखाई देना, आ लै भी फिर कहना पता नहीं मैं तो ज्यों दा मेरी होश संभाली है ना, कोई पाप नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, आ पता नहीं कितों आ गया मैं दुख, भी चंगा है इस जन्म च नहीं किया तो करना भी नहीं, ये तो पिछले ही नहीं सानू टिकन देन डे, होर कर लाँगे तो की बनूगा, ठीक है ना। सो वार्ता भी बने नहीं, काहे ते अनंत प्रकार यही है ना, सो वार्ता भी बने नहीं काहे ते अनंत प्रकार के संचित निषिद्ध जो कर्म है तिनका फल भी अनंत प्रकार का दुख है। जैसे जैसे जैड़ी जेड़ी किस्म का कर्म है उसे उस किस्म का दुख भी मिलेगा, ठीक है ना। जे आप शरीर ना किसी दुख दिता तो सानू शरीर करके भोगना पवेगा, जे आपां बाणी ना किसी नूं दुख दिता है तो बाणी करके भोगना पवेगा, जे आपां मन से किसी नूं कलेश पहुंचाया तो मन करके भोगना पवेगा। एवें किसी नूं सुना सुना के गल्लां करनियां, लगा लगा के व्यंग कसने, मानसिक दुख तो हो ही रहा है, एवो भी उन्हूं मानसिक दुख भोगना पवेगा, ठीक है ना। केवल कर्म के अनुष्ठान का क्लेश ही तिनका फल बने नहीं। पूर्व जो कहया संपूर्ण संचित काम्य कर्म ते एक ही शरीर होवे होवे है सो वार्ता भी बने नहीं, कहे ते संचित काम्य कर्म अनंत है, संचित कर्म अनंत पए हैं, काम्य मने इशारा के किए जो, तिनका एक जन्म से भोग बने ही नहीं, एक जन्म से कैसे भोग लवांगे, वो तो ढेर पिया ना, उस तो जिन्हें शरीर आप जिहड़े कर्म ये शरीर के भोग सकते हैं वह है, हो सकता आपां कोई ऐसा कर्म भी कर दिता हो जिहड़ा सानू पशु बन के भोगना पवे, तो मनुष्य जन्म च कैसे भोग लांगे, जां पशु जन्म मिल गया है तो साडे बाकी कर्म पए आ भी वह मनुष्य जन्म च सानू चंगे पए आ, वह मनुष्य जन्म च आके भोगांगे वह पशु जन्म च कैसे नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, यही कह रहा है। काहे ते संचित काम्य कर्म अनंत है, तिनका एक जन्म विषय भोग बने नहीं, और एक पुरुष को एक काल में नाना शरीर से जो भोग कहया सो भी सिद्ध जोगी बिना और को बने नहीं। को सिद्ध जोगी होगा तो ऐसे कर लेगा, बाकी सारे तो नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। सिद्ध जोगी देखो, सिद्ध जोगी को कितनी की स्वतंत्रता होएगी ये भी सुन लो। सिद्ध जोगी को भी और तो संपूर्ण समर्थ होवे है, परंतु ज्ञान बिना मोक्ष होवे नहीं। कोई सिद्ध है, कोई जोगी है, कोई इतनी सिद्धियां है उसके पास, ज्ञान नहीं है तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। इस वास्ते साढ़े गुरु साहबान की कह रहे हैं, रिद्ध सिद्ध इन्हां दे स्वाद विच मैंने, इन्हां दे आनंद विच नहीं फसना। साध मैंने स्वाद आनंद, रिद्धियां सिद्धियां दे आनंद विच ही अटक के नहीं रह जाना, ठीक है ना। जहे वेदांत वेद का सिद्धांत है, इस रीति से काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म को त्याग के जो केवल नित्य नैमित्तिक कर्म अज्ञानी करे, ताकु नित्य नैमित्तिक कर्म का फल भोगन के वास्ते और पूर्व जो शुभ अशुभ कर्म करे हैं तिनका फल भोगन के वास्ते अनंत शरीर होवेंगे। अनंत एक शरीर नहीं, अनंत जन्म, मोक्ष होवे नहीं। जाते ज्ञान द्वारा बंध की निवृत्ति ग्रंथ का प्रयोजन बने हैं, जैसे स्वप्न विषय जो मिथ्या पदार्थ प्रतीत होवे हैं तिनकी जागृत बिना निवृत्ति होवे नहीं, तैसे बंध भी मिथ्या प्रतीत होवे है ताकि भी ज्ञान रूप जागृत बिना निवृत्ति होवे नहीं। ठीक है, ये हो गया संबंध, संबंध मंडन हो गया। ग्रंथ का आरंभ बने है, इस रीति से ग्रंथ के अधिकारी विषय प्रयोजन संभवे है और अधिकारी आदिकन के संभवते संबंध भी संभवे है। जाते ग्रंथ का आरंभ बने है, दादू दीन दयाल जू सत सुख परम प्रकाश, जामे मति की गति नहीं सोई निश्चल दास। जामे मति की गति नहीं सो मैं जाके, जामे मति की गति नहीं सो मैं निश्चल दास, मैं वो ही हूं। मति की गति बुद्धि जिसनू नहीं जान सकती, बुद्धि जिस आत्मा को जिस ब्रह्म को नहीं जान सकती, सो मैं वो हूं। ठीक है, दादू दीन दयाल जू सत सुख परम प्रकाश। दादू जी उन्हें गुरु जी ना नाम सी दादू जी निश्चल दास जी दे। हाँ जी, अच्छा इति विचार सागर अनुबंध विशेष निरूपण नाम द्वितीय तरंगा समाप्त है जी। और चलो चला देने, अब दो तरंगा समाप्त हो गई, अब तीसरी तरंग चलेगी। ये छोटी जी तरंग है, चौथी तरंग तो समझ लेना भी ग्रंथ विचार सागर शुरू हो गया। ये दो दिन का पाठ जा तीन दिन का, तीन दिन तो बाद चौथी तरंग चलेगी। चौथी तरंग दे विच फिर आनंद जिन्ना मर्जी बढ़ा लियो उन्ना ही आएगा। ठीक है, ग्रंथ आरंभ की प्रतिज्ञा कर रहे पहला श्री विचार सागर तृतीय तरंगा अर्थ श्री गुरु शिष्य लक्षण। अब गुरु और शिष्य के लक्षण दसेंगे। ठीक है, पेख चार अनुबंध जुत पढ़े सुने जह ग्रंथ, ज्ञान सहित गुरु से जू नर लहे मोक्ष को पंथ। की कह रहे हैं, कह रहे पेख चार अनुबंध जुत, जुत मैंने जुगत सहित, चार अनुबंधों को सहित पेख मैंने देख करके, ये ग्रंथ में चारे अनुबंध है ऐसा देख करके पढ़े सुने जो ग्रंथ, जहां पढ़े जे पढ़ नहीं सकता ते सुने, ठीक है ना। तो फिर की होएगा पढ़न दे सुन दे नाल, ज्ञान सहित गुरु से जू नर लहे मोक्ष को पंथ, जेड़ा सुनेगा जा पढ़ेगा की कड़े ज्ञान सहित उन ज्ञान हो जाएगा, तो फिर गुरु से सुन करके ज्ञान हो जाएगा, ओ नर लहे मोक्ष को पंथ, वो जेड़ा पुरुष है मुक्ति का साधन जो ज्ञान है वो प्राप्त करेगा। ठीक है, चार अनुबंध सहित ग्रंथ को जान के ज्ञान सहित गुरु से जो पुरुष पढ़े अथवा एकाग्र चित्त करके सुने, हुण पढ़ने च सुनने च की अंतर हो गया भाई, पढ़ने च सुनने च ये अंतर है, जिन्हें के पास पुस्तक है वो तो पढ़ रहे हैं सुन भी रहे हैं, और जिन्हें के पास पुस्तक नहीं है वो की कर रहे हैं सुन रहे हैं, दोनों काम चल रहे हैं इत्थे। ठीक है ना, तो सुन दे फिर विधि विधान बता रहे हैं कैसे सुनना, सुन लो सुनना कैसे है। चार अनुबंध सहित गुरु ग्रंथ को जान के ज्ञान सहित गुरु से जो पुरुष पढ़े अथवा एकाग्र चित्त करके सुने, सुनना कैसे है एकाग्र चित्त करके, सो पुरुष मोक्ष का पंथ जो ज्ञान है ताकु प्राप्त होवे है। ठीक है, अनायास मति भूमि में ज्ञान चमन आबाद हुआ एक कारण कहत हूं गुरु शिष्य संवाद, अंदा इस वास्ते क्या करना है अनायास मैंने आसानी दे नाल जिन्हों सहसभा कह देने, अनायास मति भूमि में, भूमि किनू कहा बुद्धि नू, बुद्धि भूमि दे विच ज्ञान चमन आबाद, चमन मैंने बाग बगीचा, ज्ञान रूपी बगीचा जो है और बुद्धि रूपी भूमि दे विच आबाद खिल जाएगा। ठीक है, वह एक ही एक कारण कह तू, इसलिए मैं इस कारण से ताड़ी बुद्धि दे विच और ज्ञान रूपी जो चमन है आबाद हो जावे, इस वास्ते मैं तानू एक संवाद सुना रहा, केदा गुरु शिष्य संवाद, गुरु दा और शिष्य दा जो आपस विच गलबात हुई है, जो गुरु ने उत्तर दिते शिष्य दे प्रश्न करने पर, जो शिष्य ने गुरु नू प्रश्न किते और गुरु ने उसका उत्तर दिता, कितना प्रश्न करना चाहिए, कैसे प्रश्न करना चाहिए, कौन प्रश्न करना चाहिए, कब करना चाहिए, जानदे नहीं प्रश्न ठोक देना है ना, कब करना चाहिए प्रश्न, सारी मर्यादा करके तो फिर प्रश्न करो। तो ये गुरु शिष्य का संवाद है ना, ये तुहानू हुण सुनावांगे किहड़े चौथी तरंग दे विच, इस वास्ते सुन लो थोड़ा। गुरु शिष्य के संवाद से अर्थ निरूपण करने ते श्रोता को बोध सुख से होवे है, इस कारण ते गुरु शिष्य के संवाद से ग्रंथ का आरंभ करे है, अंदा इस वास्ते क्योंकि कोई प्रश्न करे तो दूसरा उसका उत्तर देवे तो जल्दी पकड़ चाहेगा, जल्दी समझ में आएगा, इस वास्ते शिष्य प्रश्न करेगा और गुरु उसका उत्तर देगा। हाँ जी, जैसे सुखदेव जी ने प्रश्न किते हैं और सुखदेव जी ने उत्तर दिते हैं, परीक्षित ने, राजा परीक्षित ने प्रश्न किते हैं, सुखदेव भगवान ने उसके उत्तर दिते हैं, ओही युक्ति एदे विच चली है, शिष्य प्रश्न करेगा तो गुरु ओदा उत्तर देगा, जैसा जैसा प्रश्न करेगा ऐसे ऐसे गुरु ओदा उत्तर देगा। बस ऐसी सारे ग्रंथ प्रश्न और उत्तर दे हिसाब न चलन के, क्योंकि फिर पकड़ जल्दी आ जाता है कि उन्हें यह प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रश्न हो सकता साढ़े अंदर भी हो, जिहड़े प्रश्न उन्हें किए हैं हो सकता वो प्रश्न वो शंका साढ़े अंदर भी हो, ये शंका साढ़े अंदर है आप यदि निवृत्ति कर लिए तो जो गुरु शिष्य का संवाद सुनांगे वो शंका शिष्य उठाएगा, ऐसे लगेगा ये तो मेरी शंका है, ये तो मेरा ही प्रश्न है, तो जो साढ़े प्रश्न का उत्तर गुरु देगा तो फिर साड़ी शंका निवृत्त हो जाएगी। ठीक है ना, वेद अर्थ को भले पहचाने, आज देखो गुरु लक्षण गुरु कैसा होना चाहिए चौपाई, वेद अर्थ को भले पहचाने आत्म ब्रह्म रूप एक जाने, वेद दे अर्थ नू ठीक से प्रकार से जानने वाला होवे। ठीक है ना, वेद अर्थ को भले पछाने आत्म ब्रह्म रूप एक जन आत्मा और ब्रह्म दे विच भेद नहीं समझना, आत्मा और ब्रह्म दे विच भेद ना समझदा होवे दोनों नु की जाने, एक रूप करके जो आत्मा है वो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही आत्मा है। भेद पंच की बुद्धि निसावे अद्वे अमल ब्रह्म दर्शावे। पांच प्रकार का भेद है ना, केड़ा पांच प्रकार का भेद सी ना, भेद पंच की बुद्धि निसावे केड़े केड़े, जीव ईश्वर का भेद, जीव जीवन का भेद, जीव ईश्वर दे नालों अलग है, एक ए भेद हो गया, ए जीव नालों अलग है। दो, जीव जड़ का भेद, जड़ दा जड़ वस्तु का दूसरी जड़ वस्तु दे नाल भेद, और जड़ वस्तु का ईश्वर दे नाल भेद, कितने हो गए पांच। ए भेद जेड़े है इन्हां नूं निकालण दी ठीक प्रकार से युक्ति जानदा होवे, ठीक है। अद्वे अमल ब्रह्म दर्शावे, अद्वे एक, अद्वे मैंने द्वैत, द्वैत तो रहित, अद्वैत रूप जो अमल मैंने अमल मल से रहित जो है ब्रह्म दर्शावे, ब्रह्म दा ज्ञान करवाण वाला होवे। भाव मिथ्या मृग तृष्ण समान, ये जो भाव मैंने ये भाव बंधन जो संसार है ये कैसा है, मृग तृष्ण समान, जैसे मरुस्थल दे विच मृग नू प्यास लगी है और रेत धुप लगी है, रेत चमक रही है, ऐसे लहरां बन रही हैं जैसे पानी दिया, मृग उधर नू दौड़ेगा, उधर जाएगा तो फिर रेत, फिर दूसरे तरफ दिखाई देगा, उधर नू दौड़ेगा, वो ऐसे बेचारा प्यासा ही मर जाता, उन्हें पानी मिलता ही नहीं। ऐसे ही साडा हाल हो रहा है, आपां जिहड़ी वस्तु दे विच सुख देखते हैं उधर नू दौड़ते हैं, वो सानू दुख दे दिंदी है, फिर चाहते चलो दूसरी प्राप्त करो उधर नू दौड़ते हैं, ये सुख देगी वह भी दुख दे दिंदी है, फिर ऐन दौड़ते हैं, साडा भी तो यही हाल हो रहा। भव मिथ्या मृग तिसन समाना, अनुलव इम बाखत नहीं आना। अनुलव ऐसे ही प्रकार से अनुभव से अपना दसे, बाखत नहीं आना ऐसे ही दसे, कैसे जैसे मृग तृष्ण दा जल है ऐसे ही संसार नू जानदा होए और उपदेश भी करे। सो गुरु दे अद्भुत उपदेशा, छेदक सिखा ना लुंचित केसा। ओ जड़ा गुरु है अद्भुत उपदेश देने वाला होवे, ठीक है ना, अद्भुत मैंने जीव ब्रह्म दी एकता दसाउण वाला होवे। छेदक सिखा ना लुंचित केसा, खाली चोटी कट्टण वाला गुरु नहीं होना चाहिदा, खाली चोटी कट